आगे चलते हैं। रुकू नंबर 6 है, 76 है, 93। सब्र करने वालों को अल्लाह ताला की रहमत अता की जाती है। अब एक अल्लाह का और प्यारा बंदा, जिसने इतमाम हुज्जत होने के बाद दुआ मांग ली कि रब इस कौम को अपनी इस्तो नाबूद कर दे, पूरे पारे में इतमाम हुज्जत, इतमाम हुज्जत। और किसी को इतमाम हुज्जत का मतलब समझ आया भी है कि नहीं? एनफ इज एनफ, खत्म, बस अब मैं और सब्र नहीं करूंगा। क्योंकि कई लोग झगड़ते हैं, क्यों ये हजरत नूह ने बद्दुआ की, हजरत इब्राहिम ने क्यों बुत तोड़े, ये भी नोट कर लीजिए। अभी वाक्य पूरा हुआ ना, बुत तोड़े आखिरी दिन, पहले दिन नहीं, आखिरी दिन तोड़े। क्या अब इन्होंने नहीं मानना, पकड़ो इनको। आप देखिए जूस निकालते निकालते एंड पे जो बिल्कुल यकीन हो जाता है ना कि इन छिलकों में अब कुछ जूस नहीं रहा, फिर फेंकते हैं। आप अल्लाह कौमों को जब जमीन से नीस्त नाबूद करता है, उठाता है, जब उनके अंदर एक बंदा भी साहिब ईमान नहीं रहता। अब आज मुसलमानों का कौन सा दौर है, ये थोड़ी सी बात आगे आएगी सूरत हज के साथ। तो क्या पता चला कि सबर करने वालों में एक अल्लाह का बंदा, वनुस्तु नूह अलैहि सलाम के उस वक्त को याद कीजिए जब उसने इससे पहले दुआ की, हमने इसकी दुआ कबूल फरमाई। कोई रुकावट ही नहीं है नबी की दुआ और उसकी कबूलियत में। जरा आप सोचिए मेरी दुआओं की कबूलियत के रास्ते में कितनी रुकावटें। अल्लाह से दुआ कीजिए और खुद कोशिश कीजिए, अल्लाह एक एक ऐसा फैक्टर निकाल दूंगी अपनी जिंदगी से जो मेरी दुआएं नहीं कबूल होने दे रहा। और उसे और इसके घर वालों को बड़े कर्ब से निजात दी। क्या कर्ब था उनका? महंगाई। हाय बच्चों, की ईद के कपड़े नहीं आए? नहीं, कर्ब था शिर्क वालों में रहना, गुनाह वालों में रहना। एक बंदा है मोमिन, शिर्क के माहौल में इंजॉय नहीं कर सकता, कहाँ बैठकर उनके साथ उनका महफिलों में रौनक बनना। नहीं, हम उनकी शादियों में नहीं जाएंगे, फिर गाने बजाने में नहीं बैठेंगे, फिर वो हमारी दीन की बात कैसे लेंगे? जाके देख लिया आपने कितने साल से आप जा रहे हैं, और आप वहां पर हार्ट अटैक हो जाता, वहां तो क्या करती, ब्रेन हेमरेज होता। ये सबसे बड़ा नफ्स का धोखा होता है। नहीं, हम तो नहीं पसंद करते इन चीजों को, लेकिन बस अब जाना पड़ता है ना। वैसे इसलिए जाते हैं कि आज हम जाएंगे तो कल वो आएंगे, झूठ बोलते हैं। आपको कोई के कचरे के ढेर पे बैठ जाओ, जहाँ सारे शहर का नाला है गंदा पानी, वहां आके बैठो बैठेंगे तो जिसके अंदर वो बू ही नहीं है गुनाहों की, उसको तो खुद मजा आ रहा है। फिर वो कहते गिफ्ट देने जा रहे हैं, नहीं, बस खाना खाने पे रोक लिया। नहीं, अब उन्होंने कहा नहीं चाय के बाद आप नहीं जाएंगे, अच्छा आप जरा केक भी काटने दे, तो फिर आप बाद में नहाए धोए निकल आए कि आपको कोई गुनाह नहीं, और उन सबको हो जो बेचारे जाके बैठ के एंजॉय कर रहे थे। झूठ है, कर्ब अजीम है, अपने लिए ये कर्ब मांगिए, ये आपसे तबलीग कराएगा। ये बखा और ये कैफियत आती है ना, तो फिर रात दिन एक हो जाता है। फिर बंदा कहता है किसी एक को मेरे से फायदा हो गया ना, मैं कामयाब हूँ, और एक को भी ना हो ना, मैं फिर भी कामयाब हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो लोग हमारी आयतों को झुटला रहे थे, इनके मुकाबले में हमने इसकी मदद की, यकीनन वो बुरे लोग थे, बस हमने इन सब को डुबो दिया। इत्माम हुज्जत खसकम जहां पाक। और एक और नबी बाप बेटा, यानी एक के बाद एक और दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम को याद कीजिए, जबकि वो खेत के मामले में फैसला कर रहे थे कि कुछ लोगों की बकरियां रात को इसमें चर गई थी, और इनके फैसले के वक्त हम मौजूद थे। अल्लाह वाज विटनेस, क्योंकि वह शहीद भी है, और इनके फैसले में हम मौजूद थे, यानी अल्लाह कंफर्म कर रहे हैं कि जो उन्होंने फैसला किया वो बिल्कुल ठीक किया। हमने इसका सही फैसला सुलेमान को सुझा दिया। दुआ कर लीजिए, अल्लाहुम्मा फहिमना, दुआ है, आगे इंशाल्लाह सिखाएंगे आपको। अल्लाह ने सुलेमान को वो विजडम दी, अल्लाह हमें भी दे दे। हाँ, हर एक को हमने हुक्म और इल्म दे दिया, और दाऊद के ताबे हमने पहाड़ कर दिए थे जो तस्बीह करते थे, और परिंद भी। नोट कीजिए, आज हमें इल्म बहुत मिल रहा है, हिकमत नहीं मिल रही, हुक्म नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है उसकी। हम करने वाले ही थे, हमने इसे तुम्हारे लिए लिबास बनाने की कारीगरी सिखाई ताकि लड़ाई के जरर से तुम्हारा बचाव करे, क्या तुम शुक्रगुजार बनोगे? हमने तुंदोते हवा को सुलेमान के ताबे कर दिया, जिसके फरमान से जमीन की तरफ चलती थी, जहां हमने बरकत दे रखी थी, और हम हर चीज से बाखबर और दाना हैं। और इसी तरह से बहुत से शयातीन भी हमने उसके ताबे कर दिए थे, जिसके फरमान से गोते लगा रहे थे, और इसके सिवा भी बहुत से काम करते थे, इनके निगेबान हम ही थे। अय्यूब अलैहिस्सलाम की उस हालत को याद करो, जबकि उसने अपने परवरदिगार को पुकारा कि मुझे ये बीमारी लग गई है, और तू रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। आइए अपनी जिस्मानी, कल्बी, रूहानी बीमारियां जहन में रख कर मांगे, अन्नी मस्सनिय दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। अन्नी क्या मांगे? कुछ भी तो नहीं, अपनी हालत लिखिए। या आपको दुआओं की एक नई किस्म दिख रही है जो हमारे इंडो पाक कल्चर में नहीं है, साब के, लाह के, शेर शेरों में, गानों में, ट्यून में, और फिर कहते हैं वो फलां दुआ बड़ी अच्छी कराते हैं। दो लफ्जों का नाम नहीं। ये शाम को हो रहा सेशन, जो रात का सेशन है ना, उसमें तीन चीजें रोज दे रही हूँ। एक मार्फत की चीज देती हूँ, और एक दूसरा आपको दुआओं का एक खास सेट चला है। 2 दिनों में मग़फ़रत की दुआएं दी हैं, आज अगली रात से नई दुआएं शुरू हो जाएंगी। पूरा महीना मुख्तलिफ चीजें सीखते जाएंगे। और जो तीसरी चीज उसमें आती है वो दुआ की असल क्या है, दुखों को गमों को दुआ में बदलना, शिकवों को दुआ में बदलना है। तो बहरहाल ये दुआ देखिए, अन्नी मसन्नी अदुर्रु, देखिए अपनी तरफ, अन्नी मैं, जब तकलीफ की बात आ रही है तो अपनी तरफ, वअन्त अरहमुर राहिमीन, और जब रहम की बात तो तू, ये है नबियों का अदब और अदाब। ये तक नहीं कहा कि अल्लाह मुझे ठीक कर दे, मैं कमजोर, मैं दुखी बीमार, बस। तो हाल बयान करना भी उलमा कहते हैं दुआ होती है। ये कह देना ला इलाहा इल्ला अंता, उसमें भी आने लगे, आगे देखेंगे आप। तो हमने उसकी सुन ली, और जो दुख इन्हें था उसे दूर कर दिया। अल्लाह आज भी सब के दुख दूर कर दे, हमारे सारे प्यारों की सारी बीमारियां दूर कर दे। हमारे अंदर भी अगर कोई छुपी बीमारी है उसको निकाल के बाहर मार, हमारे पास नहीं है वक्त डॉक्टरों का, ना चेकअप का, ना सोच है, ना वक्त है, और ना हमने उस पर एक पन्नी लगानी है। हर वक्त अपनी बीमारियों के रोने रोकर हम कैसे फिर दूसरे दुखों को देखेंगे। आज ये भी एक अजीब डायलमा है। अमेरिका में तो मुझे पता है डॉक्टर बड़े महंगे, और वहाँ बहुत मुश्किल प्रोसेस है। यूरोप में डॉक्टर्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं, तो इसलिए बीमारियां भी बड़ी खुशी से आती हैं। बीमारी है भी कोई नहीं, फिर भी हम डॉक्टरों पे जाते हैं। अल्लाह सारे डॉक्टरों पे और सारे बीमारों पे रहम करते हैं। चलिए, क्या किया, जो दुख उन्हें मिला था उसे दूर कर दिया, और इसको अहलो अय्याल अता फरमाए, बल्कि इनके साथ वैसे ही और अपनी खास मेहरबानी से, ताकि सच्चे बंदों के लिए सबबे नसीहत हो। और इस्माइल और इदरीस और जुल्किफिल अलैहिम अस्सलाम, ये सब साबिर लोग थे। साबिर होता है बंदा अपनी बीमारी पे, सब्र कर ले थोड़े दिन में खुद ही ठीक हो जाती है। हम अभी होने वाली होती है बीमारी तो डॉक्टरों को दिखाते हैं, तो फिर अल्लाह कहते हैं अब जब इन्होंने अपना केस कहीं डाल दिया तो फिर करने तो इनको प्रोसेस पूरा। साबिर थे, जो जैसे हालात है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र करती है, अल्लाह की बात मानी, अल्लाह ने उनकी मान ली, हमने ने अपनी रहमत में दाखिल कर दिया। ये सब नेक लोग थे, मछली वाले जन्नून। आगे देखेंगे सूरत कलम के अंदर अल्लाह ने इनको साहिबुल हूत भी कहा है। मछली वाले हजरत यूनुस को याद करो अलैहिस्सलाम, जबकि वो गुस्से से चल दिए और ख्याल किया कि हम इसे ना पकड़ सकेंगे। यह है इतमाम हुज्जत। अभी कौम पे इतमाम हुज्जत नहीं हुआ था, ये थी इज्तिहादी गलती हजरत यूनुस की। अभी अल्लाह ने उनको और मोहलत देनी थी, इन्होंने पहले ही कह दिया। जैसे कई दफा माएं दिन में 4-6 दफा कहती हैं अब मैं तुमसे नहीं बोलना, थोड़ी दफा भूली जाती हैं, फिर खप रही होती हैं, आखिरी दफा कह रही हैं उठ जाओ, फिर अगली दफा कह रही होती हैं। तो नबियों में एक छोटी सी ये कताही हुई, अल्लाह ने उसको पेश किया कि अभी आपकी कौम के ऊपर हुज्जत तमाम नहीं हुई, अभी जरा जाइए आप। क्या कहा, गुस्से से चल पड़े। बिलाखिर वो अंधेरों के अंदर से पुकार उठा, इलाही तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में हो गया। ये है वो जिसको आप और मैं आयत करीमा कहते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। कोई माबूद नहीं तेरे सिवा, तू पाक है, यकीनन मैं ही जालिमों में से था। ये सिर्फ एक कलमा जो है ना, वल्लाही ये सिर्फ एक कलमा काफी है अल्लाह की ताकत, उसकी शान को पहचानने में, और अपनी मेरी बेबसी को मानने में। यही नहीं पता, और 1,25,000 दफा पढ़ पढ़ा के सहेलियों को फिर दही बड़े खिलाते हैं, फिर उनको कोई बेचारियों को नसीब होता है पिज्जे का एक पीस, और वो क्या कह रही है, इन्नी कुंतु जालिमीन। आपने पढ़ाया ये आयत करीमा तो उनको कहना चाहिए था हिया जालिमा, अल्लाह हमारी सहेली जालिम है, इसका दुख दूर कर दे, क्योंकि ना मतलब पता है पढ़ने वालों को ना पढ़ाने वालों को, अल्लाह हम सब पे रहम कर दे। ये भी बहुत बड़ी एक हमारी उम्मत की महरूमी है। हुआ क्या, तो हमने इसकी पुकार सुन ली और उसे गम से निजात दे दी, और हम ईमान वालों को इसी तरह बचा लिया करते हैं। यहाँ कोई कॉपी राइट्स नहीं थे, राइट्स टू कॉपी थे। हम ये दुआएं पढ़ते हुए सोचते, अच्छा वो तो भाई यूनुस थे ना, और वो तो अय्यूब थे ना, और वो तो इब्राहिम थे। अल्लाह कहते कॉपी टू राइट, सबको राइट है, राइट टू कॉपी, जो तुम जितने मर्जी करो। कज़ालिका नुनजिल मोमिनीन, ये है ईमान की ताकत। आज आपके मेरे ईमान में ये ताकत आ जाए, अल्लाह मछली के पेट में से निकालेगा। मेरे दिल में वो बातें आ रही हैं जो मैंने आपको मनाजात में बतानी है, लेकिन नहीं बताऊंगी क्योंकि इस वक्त उसकी जरूरत नहीं है। तो बगैर फीलिंग्स के दुआएं पढ़ लें, इंशाल्लाह बरकत तो उसकी भी हो ही जाएगी, लेकिन नतायज अल्लाह को पता क्या निकलेंगे। अब एक ऐसे ही दीवाने अल्लाह से मोहब्बत करने वाले और नबी जकरिया, और जकरिया अलैहिस्सलाम को याद करो, जब उसने अपने रब से दुआ की, रब्बि ला तज़रनी फ़र्दा वअन्त ख़ैरुल वारिसीन, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे तनहा ना छोड़, तो सबसे बेहतर वारिस है। मांगिए, रब्बि ला तज़रनी फ़र्दा वअन्त ख़ैरुल वारिसीन। आप कहेंगे ये दुआ तो उनको मांगनी चाहिए जिनकी औलाद नहीं है, मैं कहूंगी नहीं, ये हर उसको मांगनी चाहिए जिसकी औलाद है वो फिर भी तनहा है, और जिसकी औलाद नहीं और उसके पास औलाद से कई गुना ज्यादा प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, उसकी बात मानने, उसके दिल रखने वाले लोग हैं, वो किस लिए मांग ले कि अल्लाह मेरे इन रूहानी औलाद को तनहा ना छोड़ना और इनको इस मिशन में मेरे बाद भी जारी रखना, ये मेरे दीन के विरसे के वारिस बन जाए, ये मेरे इस इल्मी चीजों की बाद में हिफाजत करने वाले बन जाए, ये ना कह दें कि चले अब नबी गया था तो बस हम भी जाए, तो अब हमें इससे क्या लेना, जो चले गए तो चले गए। औलाद माँ बाप की जिंदगी में उनका बड़ा ख्याल करती है, सामने भी करती है, असल इम्तिहान उनके बाद होता है, तो जो बाद में ख्याल करेगा वही अपना होगा। हमने इसकी दुआ कबूल फरमा कर इसे यहया अलैहिस्सलाम अता फरमाया और इनकी बीवी को इनके लिए दुरुस्त कर दिया। ये बुजुर्ग लोग नेक कामों की तरफ जल्दी करते थे और हमें लालच तमा और डर खौफ से पुकारते थे और हमारे सामने आजजी करने वाले थे, यहाँ शऊर बेदार करने के लिए पहले तो आयत का नंबर नोट करें, आगे क्या करें इस आयत का वजीफा शुरू करते हैं। अल्लाह ने इस आयत में दो काम बताए हैं जिसके बाद औलाद पैदा होने की उम्मीद होती है। मुझे नहीं पता कोई इस आयत का वजीफा ना बना ले, खुदा के लिए मेरे नाम पे कोई वजीफा ना करिएगा। यहया अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले जकरिया और उनकी बीवी युसारिऊ नफिल खैरात, भाग भाग के नेकियां करते थे, यानी दिन में अल्लाह के कामों में भागते दौड़ते थे और रातों को हमारे सामने कभी खौर रगबन व रहबन पुकारते थे, हमने उनको लाते दी। दुआओं की कबूलियत का नुस्खा, टोटका, प्रिस्क्रिप्शन, ये काम कीजिए अल्लाह देने पे कादिर, आज भी दे देगा आपको। रोते रहते लो औलाद नहीं औलाद नहीं औलाद नहीं औलाद नहीं, अल्लाह के बंदो पहले गिनो क्या है क्या है क्या है क्या है, तो तुम्हें उसमें याद आ जाएगा कि क्या नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। और वो पाक दामन बीबी जिसने अपनी इस्मत की हिफाजत की, हमने इसके अंदर अपनी रूह से फूंक दी और खुद उन्हें और इनके लड़के को तमाम जहान के लिए निशानी बना दिया। कौन? माँ और बेटा, मरियम और ईसा, अल्लाह ताला उन पे अपनी रहमतें करे। अब ये एल्बम के सफ़े पूरे हो रहे हैं, सूरत भी ततिम्मे की तरफ है। अल्लाह अपने नबी को कहते हैं ये तुम्हारी उम्मत है जो हकीकत में एक ही उम्मत है। मैं आपके समझाने के लिए कहूँ, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी फैमिली है, ये आपका फैमिली ट्री है, ये आपके खानदान के लोग थे, नबियों का खानदान ऐसा ही होता था, और मैं तुम सब का परवरदिगार हूँ, बस तुम मेरी ही इबादत करो। अब यहां तक तो था नबियों का दौर, बाद में क्या हुआ? मगर लोगों ने आपस में अपने दीन में फिरका बंदियां कर ली, सब के सब हमारे ही तरफ लौटने वाले हैं, जो टुकड़ों में बटो जाना बाद में एक ही रब के पास है, क्यों एक ही लगेगी, उसी में तुम सब का हिसाब होगा। एक तरबलना से ईमान से मुतल्लिक एक आयत अंबिया 88, फस्तजबना लहू व नजैनाहु मिनल गम्मी व कज़ालिका नुनजिल मोमिनीन। लिखिए, कुछ आजमाइशें हमें अलकरीब से करीब करने के लिए आती हैं, अल्लाह का प्यारा नाम अलकरीब। वैदा साल कई बादी अन्नी फनी करीब। अच्छा, तो वो आजमाइशें जब अलकरीब के करीब करने के लिए आती हैं तो फिर हम होते हैं, सोचिए जरा अपनी जिंदगी का कोई ऐसा दुख, लम्हा, परेशानी, जब लोग कह रहे हो कि आप दुख में हैं, आप बीमार हैं, परेशान हैं, उसके बाद क्या आप अल्लाह के करीब हुए? तो मुबारक हो आपको, आप कामयाब हो गए। ये रिपोर्ट पॉजिटिव आती है इस सूरत में कि हर दुख के बाद आप अल्लाह से एक कदम और करीब दिखें। फिर इसमें हजरत सुलेमान का जिक्र था और उनको जो अनयूजल किस्म के मोजजात थे, बल्कि मैं तो ये पढ़ते हुए कहूंगी कि जो साइंस की तरक्की उस दौर में होगी उसका तस्करा है, अल्लाह ने इसमें बता दिया कि वमिन शयातीनी मैं यगूजून, यानी हजरत सुलेमान का कारनामा कि जिन शैतान थे वो बुरे काम करते हैं, इन्होंने उनको भी अच्छे काम में लगा दिया। तो लिखिए अमल का नुक्ता, और अल्लाह करे ये किसी ऐसे कान तक पहुंच जाए जिसका हुकूमत में कुछ हिस्सा हो, कोई वजीर, कोई मशीर, कोई बड़ा छोटा, और वो क्या कि अच्छे हुक्मरान शर की ताकतों से भी अच्छे काम ले लेते हैं। जब शर वालों से खैर का काम ले लिया, तो खैर वालों से खैर का कितना काम लिया होगा उन्होंने। पिछले पारे में ज़ुल्करनैन के नाते से भी आपको मैंने यही मैसेज दिया था, आज यहाँ सुलेमान और दाऊद का भी। बनी इसराइल के इस दौर में जब अरूज था ना, तो ये बात थी। आज ह्यूमन रिसोर्स को यूज कीजिए, हथियारों की कमी पूरी हो जाएगी। जब अच्छे लोग आते हैं ना, लीड करते हैं, जैसे कहते हैं लीड लीजिए, अब हुकूमत की लीड है तो ये बात हो गई। मजहबी लीड वो लोग ले लें जो लोगों के अंदर जो शर था ना उसको खैर में बदलें, वो ऐसे पाबंदियों में ना जकड़ दें लोगों को कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। 2 4 दिन पहले, पिछले वीक हम स्कूल में थे, तो एक सिस्टर आई बाहर से, वो नूरुल कुरान का लफ्ज़ पढ़ के शायद आ गई या क्या हुआ, साथी जो थे वो बात कर करा रहे थे, बाद में मैंने भी हेलो हाय बाय किया, फिर वो गई, फिर आई, फिर गई आई। सारी बात का खुलासा, उसने कहीं से रात जाते हमारी रोड से देखा तो आई, अंदर आते हुए झिझकी, पूछा ये क्या है, बात की। उन्हें कहा, कहती वो मैं कोई स्कार्फ दुपट्टा ले लूँ, मैंने नहीं लिया हुआ। तो जो साथी थे उन्हें कहा कम इन साइड, नो वरीज, वी विल गिव यू स्कार्फ। कहती कैन आई एंटर टू योर इंस्टीट्यूट विदाउट स्कार्फ? कहेंगे असल में एक दफा मैं पहले किसी मस्जिद में गई थी बगैर स्कार्फ के, तो मुझे मस्जिद से उन्होंने निकाल दिया कि इधर स्कार्फ के बगैर नहीं आ सकते। आपने उसके शर को खैर में कैसे बदलना? दिन रात ये हो रहा है, आपको पता है मोमिन का काम क्या है, उस्ताद का काम जो होता है कि वो बोले शहर के सबसे निकम्मे स्टूडेंट को मेरे पास ले आओ, मुझे निकम्मों को पढ़ाना है, मुझे आप जैसे अच्छे लोगों को नहीं पढ़ाना, दे दीजिए सारे बिगड़े हुए। वो कहते हैं ना जो बिगड़ गया जाओ जी मौलवी साहब इसको हाफिज बना दो। अच्छे उस्ताद बुरे लोगों के अंदर से बुराई निकाल कर खुरच के निकालते हैं। अल्लाह के नबी ने क्या किया, खैरुकुम कौन थे, यानी जो दौरे जाहिलियत में खैर पे थे वो बाद में भी हुए, और जो पहले शर पे थे उनके अंदर से अल्लाह ने खैर निकाली। अब देखिए हजरत उमर को इस्लाम ना मिलता तो इस्लाम इतनी जल्दी रूज पाता? तो इतनी पाबंदियां ना लगाएं अपने दीन के नाम पे कि सारे नेकों का ग्रोह जमा हो जाए और काम करना आता ना हो जाए। तो लोगों को कबूल कीजिए उनकी कमियों के साथ, उनकी बेशियों के साथ। अल्लाह सुबहान तआला ने कोई बंदा खैर से खाली नहीं पैदा किया, मेरे जैसे निकम्मे बंदे में भी कोई खैर अल्लाह ने रखी ही होगी ना, मुझे ये सोचना चाहिए। तो खैर वालों से तो खैर का काम लेना है, इंशाल्लाह शर वालों से भी लेना है। फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ये जो दुआ, इसको भी जरा देखिए। तकलीफ की निस्बत अपनी तरफ, अन्नी मस्सनिय दुर्रु, और रहम की अल्लाह की तरफ, वअंत अरहमुर राहिमीन। यहाँ से अंबिया कराम का बा अदब रवैया दिखता है। फिर इसी में 84 आयत में जिक्रा लिल आबिदीन था, क्या नसीहत अल्लाह आपको मुझे कहते हैं इसमें नसीहत लो। नसीहत क्या है कि कुछ लोग सुलेमान और दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह नेकियों में बढ़कर काम करने वाले होंगे, अल्लाह उनको दुनिया का अरूज भी देगा, गलबा भी देगा, और कुछ लोग अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह बीमारियों पर सब्र करते हैं तो उनकी नेकियां दुख और सब्र में होगी। यानी कुछ शुक्र के दरवाजे से जन्नत में जाएंगे तो कुछ सब्र के। आपका मेरा काम क्या है कि आपके जैसे हालात है ना वैसे रवैये इख्तियार करें। कुछ लोग बीमार होते हैं तो कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, हाय बीमार बीमार, हाय तुम लोग कितना नेक काम करती हो मैं नहीं करती, हाय लोग फट 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 ऊपर चढ़ जाते हैं मैं नहीं चढ़ती। नहीं करिए ऐसा, बीमारी अजर कमाने का जरिया समझें, जले नहीं कुड़े नहीं, अपने आप को दूसरों से हल्का ना समझें, अपनी उन कमजोरियों में ही खुश हो जाएं। और याद रखिए कि अल्लाह के नबी की वो हदीस है, इनमें रखिए बुखारी के 2896, कि तुम लोग सिर्फ अपने कमजोर माजूर लोगों की दुआओं के नतीजे में अल्लाह की तरफ से मदद पहुंचाए जाते हो और इन्हीं की दुआओं से रिस्क दिए जाते हो। और अगर आप इस हदीस को जाकर बुक में पूरी पढ़े ना, तो इससे पीछे और आगे भी बड़ा प्यारा पॉइंट है, सिर्फ आपके मतलब का नोट रखा है कि वो लोग जो आपके घरों में कमजोर हैं, खांसने वाले, चल नहीं सकते, दमे के मरीज, जिनकी हड्डियों में दर्द है, जिनको खाना हजम नहीं होता, जिनको डकार आते हैं, जिनकी हाथों से चीजें गिर गिर जाती हैं, आप उनकी वजह से रिस्क पा रहे हैं। कमजोर बूढ़े बुजुर्ग बच्चे, हैंडीकैप, जहनी तौर पे कमजोर, और आप सोचते हैं आपका स्कूल चल रहा है बहुत अच्छा क्योंकि आपके बड़ी अच्छी टीम है। मैं कहती हूँ गलत है, कोई एक मेरे जैसा भी होगा जो बेचारा आता उसको कुछ नहीं, कमजोर है, अल्लाह उसकी बरकत से दे रहा। मेरा यही मानना है, टैलेंटेड लोगों से ज्यादा अल्लाह कम टैलेंट वाले लेकिन दर्दमंद लोगों से काम ले लेता, और उनकी बरकत से सारे ही बच जाते हैं। देखिए ना, एक बंदा छक्का मारता है तो सारी टीम जीत जाती है। ये कुछ सारी फरिश्तों की जमात नहीं होती जो लोग काम करते हैं, ये अल्लाह इज्जत रख लेता है। तो क्या पता चला कि सेहत के दिन की नेकियां बीमारी में भी अजर देती हैं। फरिश्ते ढूंढ रहे होते हैं उस बंदे को मस्जिद में जो आम दिनों में आता है और बीमारी में नहीं आ रहा। फरिश्ते कहते हैं कि हमें तो कहा गया कि वो वहां उस मस्जिद में बैठा इबादत कर रहा है। अच्छा, पहले आता था, अल्लाह ने इसलिए नाम लिख दिया, अपने उजर अपने हाथ में रखे। और याद रखिए कि आप नेकियां करते हैं ना तो रियाकारी का डर है, क्योंकि कोई भी नेकी करता है ना तो लोग उसको रश्क से देखते हैं, हाय कितने खुशकिस्मत, इनके माँ बाप कितने खुशकिस्मत। इसके बरक्स आप बीमार हैं, नहीं कर रहे, पीछे हैं, कोई आपको अल्लाह ने कोई रुकावट दे दी, शुक्र कीजिए, रदी तो बिल्लाही रब्बन। अब बीमारी का अदर महफूज है क्योंकि बीमार पर कोई रश्क नहीं करता, इसलिए वो रियाकारी से बचता है। फेथ इन एक्शन, बड़ों की मामला फहमी और इनके तजुर्बे से फायदा उठाना है, सिर्फ अल्लाह ताला को अपनी तकालीफ दूर करने का सबब समझना है, और फिरकाबाजी से बचने के लिए तौहीद पर जमे रहना है। और अगला रुकू पढ़ना है, सूरत पूरी होगी आगे, रुकू नंबर 794 से 112, अच्छे आमाल करने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा, इसीलिए आज कर लो। फमई आमल मिन सालिहाति वहुवा मोमिन, फिर जो भी नेक अमल करे और वो मोमिन भी हो तो इसकी कोशिश की नाकदरी या बेकदरी नहीं की जाएगी। हम तो इसके लिखने वाले हैं, और जिस बस्ती को हमने हलाक कर दिए इस पर लाजिम है कि वहां के लोग पलट कर नहीं आएंगे, यहाँ तक कि याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे। आप देखिए सूरह काहफ के आखिरी रुकू में भी इसी तरह की बातें थी। इन सारी सूरतों का शुरू और आखिर जो है ना, ये क्यामत से मुतल्लिक है या कुर्बे क्यामत की अलामतें, इसीलिए फरमाया और सच्चा वादा करीब आ लगेगा। इस वक्त कुफार की निगाहें फटी की फटी रह जाएंगी कि हाय अफसोस, हम इस हाल से गाफिल थे, बल्कि फिल वाके हम कसूरवार थे। तुम और अल्लाह के सिवा जिन जिन की तुम इबादत करते हो सब दोजख का ईंधन बनोगे, तुम सब दोजख में जाने वाले हो। यानी तुम्हारा अंजाम बड़ा बुरा होने वाला है, जिसका तुम वादा दिए जाते रहे, जिस दिन हम आसमान को यूं लपेट लेंगे जैसे तुमार में औराक लपेट लिए जाते हैं, ऐसे स्क्रॉल्स घुमा लेते हैं लट्टू वो यूज जो होता है उसकी तरह, जैसे कि हमने अव्वल दफा पैदाइश की थी इसी तरह दोबारा करेंगे, ये हमारे जिम्मे वादा है और हम इसे जरूर करके ही रहेंगे। हम जबूर में पिंदो नसीहत के बाद ये लिख चुके हैं कि जमीन के वारिस मेरे नेक बंदे ही होंगे, इसको ना भूलिएगा। ये था उम्मत मुस्लिमा से वादा। इतमाम हुज्जत के बाद फ्यूचर इज ब्राइट फॉर मुस्लिम्स फॉर इस्लाम इंशाल्लाह। इबादत गुजार बंदों के लिए तो इसमें एक बड़ा पैगाम है, और हमने आपको तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। कह दीजिए मेरे पास तो बस वही की जाती है कि तुम सबका माबूद एक ही है, फिर क्या तुम सरे इताअत झुकाते हो? क्या कहेंगे? जी अल्लाह, वी विल सबमिट। मुस्लिम हो तो मुस्लिम बनो। फिर अगर ये मुंह मोड़ लें तो कह दीजिए कि मैंने तुम्हें यकसा तौर पर खबरदार कर दिया है, मुझे इल्म नहीं कि जिसका वादा तुमसे किया जा रहा है वो करीब है या दूर। अलबत्ता अल्लाह ताला तो खुली और जाहिर बात को भी जानता है और जो तुम छुपाते हो से भी जानता है, मुझे इसका भी इल्म नहीं। मुमकिन है ये तुम्हारी आजमाइश हो और एक मुकर्रर वक्त तक का फायदा पहुंचाना हो। खुद नबी ने कहा, ए रब इंसाफ के साथ फैसला फरमा, और हमारा रब बड़ा मेहरबान है जिससे मदद तलब की जाती है इन बातों पर जो तुम बयान करते हो। रहमतुल आलमीन बनाकर नबी को भेजा, एतवानो सेवन में देखा नबी की रहमत क्या है कि आम कामों को भी जन्नत में जाने का जरिया बना दिया। खाना इबादत नहीं था, सुन्नत तरीके से खा लो, सोने को जागने को, यानी अल्लाह के नबी की रहमतों से तो एक मोमिन की जिंदगी भरी होगी। फेथ इन एक्शन क्या है कि ज्यादा से ज्यादा नेकियों की कोशिश करनी है, तौहीद पर मजबूती से कायम रहना है और हमेशा इसका पैगाम देते रहना है। खूबसूरत से पैगाम के साथ सूरत अंबिया पूरी हो रही है।